पृष्ठ संख्या 131। क्रूरता रस की इन अभिव्यक्तियों को देखकर वानर वीर को अरुचि हो गई। किष्किंधा की पाठशाला में गुरुओं द्वारा डिंगल पिंगल छायावाद मायावाद आदि से मर्जित प्राक्षलित निरामिष शुद्ध फलाहरी रुचि को यह सब कुछ कुरूप लगा। इसी समय ध्यान उचटा और उसकी नाक में भक्ष्य और पेय पदार्थों की सुगंधि प्रवेश करने लगी। उसे लगा कि यह गंध नहीं पिता का आदेश है। वानर श्रेष्ठ उसी दिशा में बढ़ता गया। अग्रहारण की एकादशी का अंतिम प्रहर है। कपिश्रेष्ठ इसी में उल्का भिसार कर रहा है। रात रहते रहते कोई फांक कोई दरार खोज लेनी है जिससे रहस्य के भीतर झांका जा सके। मरुदगण मेरे अंग अंग की रक्षा करें। जहां किसी का प्रवेश नहीं वहां पिता प्रवेश कर जाते हैं। वे पिता मेरी रक्षा करें। ऐसा मन ही मन कहते मरुत नंदन हनुमान रावण की पान भूमि और विहार भूमि के मध्य प्रवेश कर जाते हैं। आधी रात कब की ढल चुकी है। चारों ओर मर्दिता शोभा अवश्य निद्रा और उच्छिष्ट गंध है। वाल्मीकि की कविता यहाँ पर पढ़ते हुए इलियट का वेस्टलैंड याद आ जाता है। विशेषतः द्वितीय भाग में वर्णित किसी वीरांगना के श्रृंगार कक्ष का रतिगंधी चित्र। वह दर्पण के सम्मुख बैठी है। सम्मुख मखमली केसों में रखे गए रत्नजटित आभूषण झलमला रहे हैं। उसके हीरे के टाप्स और उसकी स्वर्ण कुंतल राशि रोशनी में अपूर्व आभामय हो उठी हैं। उसमें प्रसाधन सामग्री है। गंध पर गंध आभा पर आभा एक उत्कट मद विह्वलता एक उत्कट रति निमंत्रण चारों ओर व्याप्त है। शीतकालीन अग्निकुंड भी लोलिहमान रति यज्ञ की तरह दमक रहा है और उसके मेंटेल पीस के ऊपर ग्रीक आरण्यक कथाओं का अंकन है। टीरियस फिलामेला के साथ बलात्कार करते हुए बलात्कार के बाद टीरियस ने फिलामेला की जिह्वा काट ली। उसका जन्म हुआ बुलबुल के रूप में। वह सारी धरती को अपनी फरियाद सुनाती है। उसकी बलात्कार की करुण चीख हम बाग बाग में सुनते हैं। फिर भी निरंतर बलात्कार में हम तल्लीन हैं। निरंतर रतिक्रिया में लीन है। धरती का कामम अग्रित हमारे बलात्कार से गलित विषाक्त हो चुका है। आज धरती बंध्या है ऊसर है मृत प्रसवा है क्योंकि रतिक्रिया आज अग्निभक्षण बन चुकी है। यह प्राण स्वास्थ्य और अमृत का स्रोत नहीं है ही। इलियट का सारा वेस्टलैंड इसी आत्मधिक्कार इसी वितृष्णा इसी वंध्य रति की आत्मिक ग्लानि का चित्र देता है। वाल्मीकि द्वारा रावण के अंतःपुर के अंतिम चित्र को पढ़ते समय वितृष्णता उच्छिष्टता और निरर्थक रतिक्रिया के प्रति वैसा ही आत्मधिक्कार मन उठता है। वाल्मीकि का कैनवास बहुत बड़ा है। उसमें यही नहीं और बहुत सी बातें हैं। यह सही है पर घर्षित शोभा वितृष्णा के काव्य के हिसाब से यह अंश अति मूल्य संपृक्त ज्ञात होता है और वेस्टलैंड के संस्कारों के माध्यम से ये मूल्य और अधिक अर्थमय तथा स्पष्ट हो जाते हैं। पृष्ठ संख्या 132। किस प्रकार नवलेखन और नए साहित्य द्वारा प्राचीन जो जड़ नहीं चुका है नया प्राण और संस्कार पाता है तथा इस तथ्य का कुछ कुछ अनुभव यहाँ पर हो जाता है। नवीन को प्राचीन आधार देता है और बदले में नवीन के पुनः संस्कार या कायाकल्प पाता है। मारुति देखता है कि रावण के अंतःपुर में श्रृंगार लीला में थक कर या पान भक्षण से बेसुध हो जो जहाँ पड़ा वहीं पड़ा रहा। चारों ओर मौन उदासी श्रीहीनता और वमिषा अर्थात उबकाई का वातावरण है और इस सारे दृश्य को एकटक एकमात्र देखने वाले हैं जलते हुए दीपक जो हारे हुए धूर्त जुआरियों की तरह एक पांत में चुपचाप बैठे हैं सिर पर हाथ देकर। जलते दीपों को छोड़कर शेष सभी अस्त व्यस्त मर्दित घर्षित सुप्त अवश्य हैं। रौदी लताओं की तरह वाहिता किशोरी घोड़ियों जैसी श्रांत अवश्य सुप्त प्रमदाएं इधर उधर चित्तपट उत्तान करवट बेखर बेखबर सोई है। कोई वाणी को कसकर आलिंगन में बांधे हुए है। कोई मदपान से बेशुद्ध मृदंग को ही कामातुर भाव से दबाए है। कोई अन्य प्रमदा को ही अपने प्रेमी मानकर लिपटी हुई है। चारों ओर घोर रम त्रिषणता, घोर उत्कट देह गंध और रतिमर्दित उच्छिष्ट स्त्री। संध्याकाल में जो कुछ लक्ष्मी की छवि श्री जैसा मनोहर था वह सब कुछ कुसरी विसरी हो चुका है। कपिश्रेष्ठ के ब्रह्मचारी चित्त में बड़ी वितिष्ठा हुई। उन्हें संतोष भी हुआ कि अन्य नरों की भांति, कुकर शुकर की भांति उन्होंने इस अच्छिष्ट अपावन भोग को अपने शरीर में कभी नहीं लपेटा और निरंतर ब्रह्मचर्य का अमृत पीकर जांघों पर ताल ठोक कर विचरण करते रहे। सुप्त मांस की विशाल राशि की तरह पलंग पर पड़ा था, उसकी ओर उपेक्षा की दृष्टि डालते वे बाहर निकल गए। रास्ते में सारी पान भूमि जूठे बर्तनों, भृंगारों, करको मृद भांडों, उल्टी सुराहियों से भरी पड़ी थी। कहीं मांस की ढेरियां, कहीं फल मूल, कहीं व्यंजनों की राशि तो कहीं कहीं लबा भरे मदिरा के घट अब भी पड़े थे। दही और मसालों की गंध से तो मदिरा की उत्कट वाष्प से उनका माथा भिन्न गया। वे बाहर निकल आए। पूर्व दिशा में लालिमा के आसार अभी प्रकट नहीं हुए हैं, पर रात्रि एक घड़ी शेष है। चुहचुहिया बोलने लगी है। मारुति एक प्राचीर पर बैठकर ताजी स्वच्छ हवा से घ्राण शुद्ध कर रहे हैं। रात के झड़ते बकुल और परिजात के गंध से संपृक्त हवा उन्हें बार बार इशारा कर रही है एक दिशा विशेष की ओर। यह सुगंध उन्हें वैसे ही रमण की अशोक वाटिका की ओर खींच रही है जैसे कोई बहन उत्कंठा से भाई को पत्र लिख लिख कर बुला रही है। अशोक वाटिका का ख्याल आते ही महाकवि के असीम धीम गंभीर हृदय में नई आशा का संचार हो गया। वे मन ही मन विश्वात्मा ईश्वर और विश्वमन की उदात्त शक्तियों से प्रार्थना करने लगे कि उस उन्नत नाशिका, कुंदश्वेत दंत पंक्ति, व्रणहीन स्निग्ध मुखमंडल, पद्म पलाश लोचन एवं निर्मल चंद्रोपम अंग कांति वाली आर्या भगवती मैथिली के दर्शन पा जाएं, जो कहीं पर यही पिंजरबद्ध शारिका की सी छटपटा रही होंगी। तदुनन्नस पांडुरदम तम्रवर्णम सुचिस्मितम पद्म पलाशलोचनम द्रक्षेदतार्यावदनम कदान्वहम प्रसन्नताराधिपतुल्यदर्शनम।